आहान ये सुनकर चौंक गया। खुश होकर मन ही मन बोला, काश मैं इन लोगों को सच बता पाऊं तो सुमित भैया और राधिका दीदी की तरह मेरी और रौनक की भी शादी हो जाएगी। ये सोचते हुए आहान बेचारा सा मुंह बनाने लगा। आहान की नज़र रश्मि के बराबर में खड़ी रौनक पर पड़ी। रौनक बेपरवाही से लॉलीपॉप चूस रही थी। हमेशा की तरह उसने अपना काला हुडी अपने सर पर पहना हुआ था। फॉर्मल जीन्स टॉप में वो बड़ी ही क्यूट लग रही थी। आहान रौनक को देखकर सोचने लगा, ये लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी अभी स्कूल से आई है। अगर ये मुझसे शादी कर भी लेगी तो क्या ये एडजस्ट कर पाएगी? और मेरा बच्चा, अगर मेरा बच्चा इसी पर चला गया तो? कुछ ही पल में आहान ने खुली आंखों से कितने ही सपने देख लिए थे। वो मानने लगा था कि उसके आसपास कितने ही बच्चे बैठे हैं और सभी रौनक की तरह काला हुडी पहने हुए हैं और सबके हाथों में एक लॉलीपॉप है और वो सब मज़े से चूस रहे हैं और आहान के कानों के पास चल्ला पुकार कर रहे हैं, डैडी डैडी आ आ। और आहान सभी बच्चों को एक तरफ से डांट रहा था, बहला फुसला रहा था, लेकिन सभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तब आहान ने अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीख मार दी, आ आ। अब आकाश, रश्मि, दादाजी और नानी माँ घूरकर हैरानी से आहान को देखने लगे। वहीं रौनक भी डरकर चौंक गई। तब दादाजी चिढ़कर बोले, अरे बदमाश, क्या हुआ? खुली आंखों से सपने देख रहा है क्या? और ये क्या हरकत है? क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? तब आहान को एहसास हुआ कि इस वक्त वो कहाँ खड़ा हुआ है और वो खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। तब वो हकलाकर बोला, वो दादाजी, वो मैं, आहान कोई बहाना सोच रहा था। वहीं रौनक आहान की ऐसी हरकतों पर खिलखिलाकर हंसने लगी और तुरंत दादाजी के सामने खड़ी होकर शरारती आवाज में बोली, दादाजी, मुझे तो पूरी उम्मीद है ये छछुंदर सिंघानिया पागल हो गया है। वैसे भी इसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, अभी भी वक्त है। जैसे ही रौनक ने इस तरह मजाक उड़ाया, आहान आंखों ही आंखों में रौनक को चुप रहने का इशारा करने लगा। तब दादाजी अपने हाथ उठाकर टोकते हुए बोले, अच्छा, तुम लोग अब फालतू की बातें बंद करो और तुम सब मिलकर अब सारी प्लानिंग कर लो। मैं कल सुबह ही सुमित और राधिका दोनों से बात कर लूंगा। और बहन जी, अब आप ही बताइए, अविनाश और एंजल बिटिया से आप किस तरह से बात करेंगी? तब नानी माँ हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, आप उसकी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, उनसे बात मैं नहीं बल्कि आस्था करेगी। अब दादाजी भी मुस्कुराने लगे और खुश होकर मन में सोचने लगे, अगर आस्था को इस तरह से अपना ध्यान शादी के फंक्शन में लगा देंगी तो आस्था का ध्यान अरमान पर से हट जाएगा और शायद वो अरमान की डेविल किंग होने की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगी और राजी खुशी उसके साथ रहेगी। अभी तक सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद आस्था अरमान की डेविल किंग होने से नाराज थी, लेकिन किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं था, असल में वो अरमान का राजवीर जिंदल के साथ रिलेशन से नाराज थी। तभी रश्मि नानीमा का हाथ पकड़कर बोली, नानीमा, मुझे लगता है कि अब आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी जब से आप हॉस्पिटल से आई हैं, आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। ये बोलकर रश्मि ने जल्दी ही नानीमा को आराम करने को कहा और उन्हें दवा देकर उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और फिर आकाश के साथ अपने कमरे में आकर वो आगे की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आस्था के सोने के बाद अरमान प्यार भरी नजरों से उठकर उसे देखने लगा। आस्था उसकी बाहों में एकदम सुकून से सोई हुई थी। हालांकि अरमान जानता था कि आस्था इस वक्त उसके पास भी नहीं आना चाहती है। ये बात अरमान को काफी बुरी लग रही थी, लेकिन वो ये सच जानता था कि एक ना एक दिन जब उसकी बीवी को उसके पति के सच का पता चलेगा तो शायद उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो डरता भी था, क्योंकि आस्था उसकी कमजोरी बन चुकी थी। अरमान सिंघानिया ने कभी नहीं सोचा था कि आस्था इस हद तक उसकी कमजोरी बन जाएगी, लेकिन अरमान आस्था के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। अगर आस्था कहते कि उसे कभी किसी का खून नहीं करना है तो अरमान कभी किसी का खून नहीं करता। फिलहाल तो उसे अपनी रूठी हुई बीवी को मनाना था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में आस्था का टेंशन लेना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। ये बात वो अच्छी तरह से समझता था। कुछ देर बाद आस्था के खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद अरमान ने उसके पेट पर हाथ रखकर प्यार से हल्का हल्का सहलाना शुरू कर दिया था, मानो कि वो अपने बच्चे को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। कितनी ही देर तक अरमान इस खूबसूरत पल को एंजॉय करता रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे भी एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर वंशिका इस वक्त बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। ऊपर से ध्रुव की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर न जाने क्यों वंशिका का दिल टूट रहा था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वंशिका की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर गार्डन में टहलने के इरादे से गार्डन की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो गार्डन की तरफ जा पाती, किसी ने उसका मुंह दबाकर उसे अपनी तरफ कमरे में खींच लिया था। अब तो वंशिका के हाथ पैर पूरी तरह से फूल गए थे। उसे लगने लगा था कि जरूर अब अरमान सिंघानिया उसकी जान ले लेगा, या फिर टाइगर, जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसकी जान ले लेगा। आस्था दिन में तो उसे बचा लेती, लेकिन रात के इस पहर उसे कौन बचाएगा? लेकिन जैसे ही उसने अपने किडनैपर का चेहरा देखा तो वंशिका हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव को देखकर वंशिका ने उसे इशारे से अपने मुंह पर से हाथ हटाने के लिए कहा। अपनी आंखें बड़ी करके बार बार वो हाथ हटाने के लिए बोलने लगी, लेकिन ध्रुव गुस्से से लगातार खूर रहा था और बोला, इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? रात को एक बार फिर किसी परिवार वाले की जान लेना चाहती हो? याद रखना वंशिका, मेरी नजरें तुम पर ही बनी हुई हैं और अब मैं तुम्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ध्रुव का एक एक शब्द वंशिका के दिल को पूरी तरह से छलनी कर रहा था। फिलहाल ध्रुव की बात सुनकर वंशिका ने तुरंत उसके हाथ को झटक दिया था, जिससे ध्रुव का हाथ उसके मुंह पर से हट गया था। तो वंशिका थोड़ा खींचकर सांस लेते हुए अटकती हुई आवाज में बोली, मैं किसी की जान लेने नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ गार्डन में टहलने जा रही थी, समझे तुम? अब जाने दो मुझे। ये बोलकर वंशिका बिना रुके वहां से जैसे ही जाने के लिए पलटी, लेकिन ध्रुव ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो सीधा ध्रुव के सीने से जा लगी। और इस वक्त घबराहट से वंशिका पूरी तरह से हांफ रही थी। तब ध्रुव वंशिका के बालों को बेरहमी से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अपनी फालतू की बात बंद करो और झूठ बोलना बंद करो। मैं समझ गया हूं कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, समझे तुम? उस वक्त वंशिका और ध्रुव के होठों में केवल कुछ इंच का ही फर्क था। दोनों के सांस एक दूसरे के सांसों से टकरा रही थी। ध्रुव की आंखों में एक अलग ही तरह का तूफान भरा पड़ा था। तभी वंशिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आ आ छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। तब ध्रुव आंखों में जुनून लिए वंशिका की ओर देखकर बोला, दर्द मुझे भी हो रहा है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव जैसे जैसे ये दर्द वाली बात बोल रहा था, उसकी आवाज काफी गहरी होती जा रही थी। वंशिका को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने ध्रुव को एक दो बार और कुछ टोका तो जरूर ध्रुव उसकी जान ले लेगा या फिर खुद की जान दे देगा। इस वक्त ध्रुव काफी खतरनाक और डरावना सा लग रहा था। तभी वंशिका ने थोड़ी ताकत लगाकर जोरों से अपने बालों को ध्रुव के हाथों से छुड़ा लिया था।
वो ध्रुव की ओर देखकर चिढ़कर बोली, देखो मैं तुम्हें अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। मैंने अब तक क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे उसका इतना सा भी अफसोस नहीं है, समझे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं वंशिका जानती थी कि जब से उसने अरमान पर हमला किया है तब से ध्रुव उससे कितना ज्यादा नाराज है। इसलिए वंशिका ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर ध्रुव को उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे दूरी बनाकर रखे। ये बोलकर वंशिका वहां से जाने लगी, लेकिन ध्रुव को ये बात समझ नहीं आती है और वंशिका का इस तरह से बोलना उसे अंदर ही अंदर तपा गया और अचानक उसने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था और वंशिका को पकड़कर उसके होठों को बेरहमी से किस करना शुरू कर दिया था। अब वंशिका अब पूरी तरह से शॉक हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो किस तरह का रिएक्ट करे, क्योंकि ध्रुव तो पागलों की तरह उसे किस जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आहान की आंखों में आज दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी और उसका दिल रौनक को देखने को कर रहा था, इसीलिए जल्दी ही वो अपने कमरे से बाहर निकलकर रौनक के कमरे की तरफ पहुंच गया था। जैसे ही वो रौनक के कमरे में गया उसने देखा रौनक घोड़े बेचकर और मुंह के बल उल्टा लेटी हुई है और उसका पेट दबाव में था। अब आहान ये देखकर चौंक गया और सोचने लगा, ये पागल लड़की किस तरह से लेटी हुई है? क्या इसे लेटना नहीं आता है? इस तरह से तो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तब फटाफट आहान फटाफट उसके करीब गया और रौनक को सीधा लेटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर रौनक इस तरह से उल्टा लेटेगी तो उसका बच्चा दब जाएगा। हालांकि उसे इस तरह की बात का कोई आइडिया नहीं था कि रौनक के अभी सिर्फ शुरुआती दिन थे। तब उसने रौनक का हाथ धीरे से उठाकर उसकी कमर से पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच में वो खुद रौनक के ऊपर लुढ़क कर गिर गया। रौनक की आंखें तुरंत खुल गई थीं और वो झट से उठकर बैठी। जैसे ही वो चीखने को हुई तुरंत आहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और उसके मुंह पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, प्लीज प्लीज चीखना मत यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें सीधा करके लेटाने के लिए आया था। अब तो रौनक चौंक गई थी। आहान अभी भी उसी के ऊपर था और उसी का मुंह दबाकर उसे बोले जा रहा था, चीखना मत। तब रौनक उसे कुछ कहना चाहती थी और अपनी टिमटिमाती आंखें बड़ी करके बार बार उसे इशारे कर रही थी कि वो अपना हाथ हटा ले, लेकिन आहान को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो बस यही बोले जा रहा था, प्लीज प्लीज तुम चीखना मत, तुम चीखना मत। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने उसके मुंह पर हाथ रख रखा है तो वो बोला, देखो तुम चीखना मत, मैं तुम्हारे ऊपर से हाथ हटा रहा हूं। तब रौनक ने अपनी पलकों को झपकाकर हां में इशारा किया और जैसे ही आहान ने हाथ हटाया रौनक बिजली किसी तेजी से आहान को धक्का देकर उठकर बैठ गई थी और उसकी ओर देखकर उसे घूरते हुए बोली, छछुंदर तुम पागल हो गए हो क्या? आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं अभी चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर को उठा लूंगी। बोलो, जवाब दो। तब जल्दी से आहान बोला, देखो मिस हवा हवाई, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें सीधा करके लेटाने के लिए आया था, तुम उल्टा लेटी हुई थी। अब रौनक आहान की बात सुनकर चौंक गई और आहान को घूर कर नासमझी से देखते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं रात को कैसे सोती हूँ, किस तरह से नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम क्या आधी रात को ये चेक करने के लिए आए थे? हाँ मैं उल्टी करवट से सोई हूँ या सीधी हूँ, इससे तुम्हें क्या? रौनक बहुत चिढ़ रही थी, लेकिन तभी आहान समझाते हुए बोला, देखो प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस हालत में उल्टा लेटना ठीक नहीं है। अब रौनक चौंक गई और आंखें मटकाते हुए बोली, ऐसी हालत में? मतलब कैसी हालत में? क्या हुआ है मुझे? तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मुझे किस तरह से लेटना है, किस तरह से नहीं लेटना है? देखो मिस्टर छछुंदर, इस वक्त 2 बज रहे हैं, मुझे तुम्हारा कोई प्रैंक, कोई भी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, तो अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, वरना मैं अभी रश्मि दीदी को यहाँ बुला लूंगी और दादाजी को भी। फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। जैसे ही रौनक ने दादाजी की धमकी दी, आहान हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, तुम दादाजी को मत बुलाना, मैं बस जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम उल्टा मत लेटना। अब तो रौनक की चिड़चिड़ाहट हद से ज्यादा बढ़ गई थी और थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने धक्का देकर आहान को अपने कमरे से निकाल दिया और झट से कुंडी लगा ली थी और फिर झल्लाकर बोली, आखिरकार इस छछुंबे को हो क्या गया है? मेरे उल्टा सीधा लेटने से इसको क्या प्रॉब्लम है? ये बोलकर रौनक एक बार फिर बेपरवाही से जाकर बिस्तर में घुस गई थी। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टीसी।